महमूद, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, तुम फोन और दरवाजे की घंटी पे ध्यान रखना।
ठीक है, तुम भी ना।
अरे, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से वापस उसकी जगह पे रख दो, अगर ये वापस आ गए तो।
मैं देखना चाहता हूँ आखिर ये कैसा कुरान है जिसने मेरी ताई को भी शिफायाब कर दिया है, और बास तुम जैसियों की भी नजरें इस पर टिकी हुई हैं।
किसने कहा मेरी नजरें इस पर टिकी हुई हैं?
वैसे है तो बहुत ही अजीब गरीब।
तुम कहीं से बेचने का इरादा तो नहीं रखते?
वैसे सच पूछो तो इसकी कोई इतनी कम कीमत भी नहीं होगी।
अब ये कौन आ गया? महमूद, इसे इसकी जगह पे रख दो, कभी ये चीज भूल गए होते तो वापस आ जाते।
पहले तो ये कि वो दो दफा घंटी बजाते हैं, और दूसरे ये कि किसी तौर पर भी अपनी मस्जिद को छोड़कर घर नहीं आते।
मुझे तुम्हारे चचा से बात करनी होगी, मुझे उनसे मिलना होगा। रामी,
अगर मुझे कहीं दिखे तो मैं दोनों की तरफ से माजरत कर लूंगा, आप दवा खाएं।
मुझे उनसे कोई कोई हल मांगना होगा, कोई दूसरा हल। हम दोनों के इस घर से जाने के अलावा, अगर हम दोनों चले जाएं और कोई आफत आ जाए इस घर में, तो रामीन, फिर फरीदा, उसके बच्चे शाहीन, और वो मेरा बदबख्त धोखा खाया हुआ शौहर।
डॉक्टर का नाम भी क्यों नहीं ले लेती आप? क्योंकि ना ही वो आपका शौहर है और ना आपके खून से। चाचा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो कोई दूसरी राह बता भी दें तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई फायदा नहीं। ये एक तल्ख हकीकत है अम्मी, हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना होगा।
मतलब तुम अभी अपना बोरिया बिस्तर लपेट के जा सकते हो?
यानी आपको नहीं पता कि मैं सालों से अपना बोरिया बिस्तर लपेट के चले जाने की फिक्र में हूं?
मगर तुम नहीं गए।
तो जाहिर है मैं आपकी वजह से मजबूर था, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई नहीं था। अम्मी जान, तोहमत लगाना मतलब भाई बहन को बेच देना। सिर्फ अपनी ही फिक्र में रहना यानी माँ बाप को बेच देना, अपनों की फिक्र में रहना लोगों को बेच देना। आप ही बताइए कितने ऐसे अफराद हैं उस कमरे में जो दिन में 100 बार मुझे और आपको बेच देते हैं?
मगर उस कमरे में दो मासूम बच्चे भी हैं। तुम्हारे बाप ने मेरे साथ जितना भी बुरा सलूक किया, मगर मैं उन दो बच्चों को हरगिज़।
अम्मी जान, उन दोनों बच्चों की मां भी है। अरे भैया, आपको क्या हो गया? कल तक तो आप कहती थी इस घर में अच्छाई क्या रह गई है, अब कह रही है मेरा धोखे में आया हुआ शौहर। सच बताइए, क्या मेरे बाप का बख्त बुरा है या वो किसी के धोखे में आ गए? जो शख्स सुबह से शाम तक अपनी हुकूमत की मेज पर बैठा रहता है और लोगों का बख्त बिगाड़ने के लिए सिर्फ अपनी मनमानी करता रहता है।
मुझे तुम्हारी मदद ही नहीं चाहिए। उठो, जाओ जाओ यहां से, चले जाओ। अब जबकि हमारे दरमियान खुदा रसूल की बात आ गई है, बजाय रहम दिल होने के बेरहम होते चले जा रहे हो। जाओ यहां से, चले जाओ।
आपका जो दिल चाहे वो कीजिए, मगर बस इतना याद रखिए, अगर खुदा से ज्यादा ममता का प्यार दिखाएंगी तो मुमकिन है आपकी ये दिलसोजी की आग आपके अपने पांव भी जला दे। दवा खाएं और आराम करें।
आज रात ये बिजली ऐसी क्यों हो रही है?
आखिर बिजली जो रही, भला ये भी कोई बच्चों के सामने पूछने वाला सवाल हुआ? तुम्हें नहीं मालूम कि इस तरह क्यों होता है?
डरो मत मामू की जान, इस मुल्क में एक जमाने से इन हरकतों के जरिए लोगों का बिजली का सामान उड़ा दिया जाता है और कोई पूछने वाला ही नहीं है। जी हाँ
मेरी जान, आदमी को बहादुर होना चाहिए। सिर्फ बहादुर आदमी को यह पता होता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फरीदा, वो चमचा देना जरा मुझे।
बाबा, आपका फोन बज रहा है।
आप बैठे रहिए, मैं लेके आता हूँ।
तुम्हें कोई जरूरत नहीं, अफशीन बेटा जाओ मेरा मोबाइल उठा के लाओ।
पता नहीं कब तक हमें न किए हुए कामों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
तुम जितना ज्यादा जी हुजूरी करोगे उतना ज्यादा साबित करोगे कि तुम्हारी दाढ़ी में कोई तिनका है।
हमारी दाढ़ी कब थी जिसमें तिनका होगा भाईजान?
अरे पप्पू साहब, तो फिर जी हुजूरी और खमियाजा भुगतने की भी कोई दलील नहीं है तुम्हारे पास?
आपसे क्या वास्ता इसका? हमने फिर जरा सा मुस्कुरा के क्या देख लिया, आपने सारा किस्सा हम पे ही थोप दिया।
मैं सके जाऊं।
आलो
ताया माफ कीजिएगा, मैं जरा सो गया था, मैंने सोचा कि आप थोड़ा सा खुमार ले लें।
अगर तुम में हिम्मत है तो इधर आ जाओ, फिर बताता हूँ तुम्हें।
आपने फोन तो अपने बेटे को दे दिया था ताकि मुझे उल्टे सीधे जवाब दे दे, अब आप माने या ना माने मुझे जरा सा बुरा लगा। हमारे ताया हैं ही बेगैरत आदमी।
जब तक ये ना समझाता कि तुमने खुद ही बेगैरती दिखाई।
बाबा महमूद है क्या?
और वो डब्बा ला के मुझे दे दिया, तब तक मैंने तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारा नाम नहीं लिया।
अरे ऐसे नहीं, मैंने डब्बा नहीं दिया आपको ताया, एक मिनट होल्ड कीजिए। ताया फोन आपके पास है ना? हाँ, वो खुदा ने आपके हिस्से में डाल दिया है ताया।
जनाब उसकी बातों के धोखे में मत आइएगा, डब्बा उसी।
मैंने बाबा जान की मेज पर रखा हुआ कुरान देख लिया, एक ऐसा कुरान कि जब उसे देखो तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
एक ऐसा कुरान जिसके आखिर में 30-40 आलिम और इमाम जमाना का दीदार किए हुए मोमिनों के दस्तखत हैं, मेरी छोटी माँ ने अनजाने में वो कुरान वहाँ से उठा के
उसकी जगह डब्बा रख दिया था। अलबत्ता मेरी छोटी माँ ने नहीं ताया जान, असल में उसी खुदा ने। अगर शक है तो शाहीन और डॉक्टर से पूछ लें जो पहले से हर चीज से वाकिफ थे। बहुत गलत किया आपने कि अपना मोबाइल बंद कर दिया और मुझे अपने बाप को बेचने वाले बेटे के सुपुर्द कर दिया।
खबीज कहीं का।
रुक जाओ शाहिद प्यारे, बाबा के पास फोन है ना।
अब कम से कम मुझे बात करने दीजिए, हम भी तो देखें आखिर वो चाहता क्या है।
मुझे खुद बहुत देर से पता चला है कि उस कपड़े में कुरान के बजाय
कोई और चीज आया, मगर शाहीन आपके दामाद के कहने पे मेरे घर के पास जासूसी कर रहा था, उसने मुझे वापस जाके वो कुरान लाने नहीं दिया। सिर्फ तुम्हारे बदल जाने के खौफ से कि कहीं तुम उनकी मीरास फकीरों
और जरूरतमंदों को ना दे दो और मस्जिद ना बना लो। दरअसल खुदा नहीं चाहता था ताया, खुदा और वही मेज वाला कुरान जिसने तुम्हारी बीवी को शफा दी।
और अब जल्द या बदेर से तुम्हारा किस्सा तमाम करने वाला है, तुम्हारा किस्सा तमाम करने वाला है।
हेलो हेलो हेलो,
लानत हो मुझ पर अगर मैं ही वो आफत न बन गया जो तुम लोगों की जिंदगी उजाड़ कर रखती।
बार बार फोन करके दीना के बारे में तरह तरह के सवालात पूछ रहे हैं, और फिर एक फलां शक्लो सूरत की गाड़ी और एक मासूम शरीफ बच्ची एक लड़के के साथ भाग जाने की बात करते हैं। अल्लाह हू अकबर, देख रहे हो कैसे कैसे लोग हैं आजकल बातें बनाने वाले।
मैंने पूछा कि महमूद ने तुम्हें क्या बोला था जो तुमने मुझे नहीं बताया।
मैं तो आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि महमूद के पास झूठ बोलने के सिवा कुछ भी नहीं है।
मैंने भी तुम्हें 1000 दफा कहा है कि दफा हो जा।
जी अच्छा।
उस बर्तन चोर के बेटे ने अब तक ये नहीं कहा कि वो डब्बा अपने बाप के घर से नहीं लाया, यही कह रहा है कि उसकी छोटी माँ का है, मगर वो कहता है कि तुम उसके घर के दरवाजे पे थे और तुमने उसे वापस जाके कुरान उठा के लाने से रोका था, क्यों?
झूठ बोल रहा है बिल्कुल, वो भी अपने बाप की तरह दीना के खो जाने को मेरे सर पे डाल देना चाहता है। खुदा की कसम इस घर में सबको पता था, सब इस बात के गवाह हैं कि मैं रात को अपने दोस्तों के घर पे था, क्या मैं नहीं था?
झूठे मक्कार, एक शख्स ने सबके सामने तुम्हारी उस झूठी सालगिरह पार्टी का ड्रामा खाक में मिला दिया, कुछ समझे? अब सच बताओ कि तुमने उसे क्यों कुरान लाने से रोका?
आपने अपना काम तो कर दिखाया ना, अब क्या कुरान कुरान बोल रहे हैं? कौन सा कुरान? हाँ हाँ क्या है, सही तो कहा है मैंने।
अरे सच कहा तुमने, कसम से, क्या तुमने नहीं बताया? ये नहीं बताया कि मुझे किसने बाबा का पीछा करने को कहा था? ये नहीं बताया कि किसने मुझसे कहा था कि जाओ देखो महमूद को बाबा से क्या काम है? नहीं बताया था तुमने बदतमीज? इसने कहा था।
अपने उस बदतमीजी के आदमी मुंह का जरा ख्याल रखना, बड़े छोटों की तमीज नहीं है तुम्हें, तमीज से बात करो। मुझे क्या मालूम कि तुम अपने चाचा के घर के पास थे या नहीं, और फोन पे झूठ बोल रहे थे या नहीं? हाँ
अरे 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 अरे, कितना मकार आदमी है ये, जरा सा सब्र करो, हम इसे नरम करें थोड़ा सा। इधर तो आना जरा।
समझते हो मैं कमजोर हूँ? हाँ, ग्रीवान छोड़ो मेरा।
अरे चल ना।
अरे रामीनो, अरे मेरा पैर।
अरे लगता है तुम भी मेरी तरह थक चुकी हो। आखिरी स्टाफ है, उतर जाओ। सिर्फ एक बात याद रखना और इसे बिल्कुल भूलना मत, मेरे पास इतना हौसला नहीं है कि तुम्हारी खातिर अपने आप को इस घर की औरत के रूबरू खड़ा कर दूं। जैसी तुम्हारी शक्ल व सूरत है, हो सकता है इसकी वजह से कुछ अरसे तक तुम्हें उल्टी सीधी बातों का निशाना बनाए। तो कोशिश करो कि इन दो तीन दिनों में जब तक तुम इस कबाड़खाने में हो, तुम्हें जो भी कहे इसके खिलाफ बात मत करना।
क्या मेरे कपड़े बहुत नामुनासिब हैं?
मैं तुम्हारे नामुनासिब हुलिये की बात कर रहा हूँ। आओ।
अरे अस्सलाम वालेकुम साहब, आप आ गए?
वालेकुम अस्सलाम। तुम फिर मेरी बीवी की गाड़ी लेकर बाहर जा रहे हो?
नहीं साहब, मैं तो बीबी साहिबा की एक दोस्त को घर छोड़ने जा रहा हूँ।
बीबी साहिबा की दोस्त कौन है?
उनकी दोस्त है कोई।
जाओ। कहाँ रह गई? आओ ना भाई।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
आपने तारुफ नहीं करवाया जनाब।
तारुफ? हाँ नहीं कराया। मोहतरमा डॉक्टर दुर्मनीश हैं और ये है गुमशुदा।
गुमशुदा?
हाँ मतलब कुएं की गुमशुदा।
गुमशुदा कबूतर, अच्छा मजाक था, मुझे खुशी हुई। असल में पता नहीं चलता कि ये कब संजीदा अंदाज में मजाक कर रहे होते हैं और कब बातें घुमा रहे होते हैं। हिंगामा ने मुझे अब तक नहीं बताया कि कोई ऐसा कुएं का कबूतर भी इनके इर्द गिर्द घूम रहा है, दूर के रिश्तेदारों में से है।
हाँ अबा अजदाद से कुछ शक्ल मिलती है।
मुझे भी यही लग रहा था, मगर अफसोस के मुझे हिंगामा की दोस्त और उस पीली शाल को अपने बच्चों तक पहुँचाना है। काश आप थोड़ा सा जल्दी आ जाती गुमशुदा साहिबा, ताकि जरा खुल के एक दूसरे से तारुफ हो जाता। मगर बाद में जरूर आऊंगी ताकि तारुफ कर सके, है ना हशमतियान साहब?
हाँ बाद में भी तारुफ हो सकता है। डॉक्टर को मेरा सलाम कहिएगा।
जरूर पहुँचाऊंगी, फिर मिलेंगे कुएं वाली।
क्या है, तुम समझती हो कि सिर्फ तुम्हारा ही दिमाग चकरा रहा है? कुएं वाली ऊपर आओ। खुद जानती हो कि मेरे पास अजनबी के साथ मगजमारी करने का हौसला बिल्कुल नहीं है।
और तुम उसे उठाकर यहाँ ले आए? तुम मुझे मार देना चाहते हो क्या? क्या बात है तुम्हारी सियामिक? जो आखिरी शक्ल तुम इस घर में लाए थे, क्या वो पीले बालों वाला लड़का नहीं था जो मेरे जवाहरात के डब्बे के साथ गायब हो गया? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारा ये झूठा वकील है किस किस्म का, जो मुझे फोन पे कहता है 70 साल बुढ़िया है, उसके बाद तुम एक वल्गर और बेनामो निशान जवान लड़की को अपने साथ लिए चले आ रहे हो यहाँ।
अपनी आवाज नीची रखो।
कुएं वाली लड़की, रात के इस वक्त कब्दी साहब सहन के तमाम दरवाजों को लॉक कर देते हैं, बाहर का चोर अलार्म भी ऑन कर देते हैं। अगर आपको बाहर जाना हो तो बेहतर होगा कि हिंगामा साहिबा से इजाजत लेके जाइएगा, वरना वो गुस्सा भी हो जाती है।
कहाँ है लड़की? कहाँ है
वो? है मोहतरमा।
अच्छा अच्छा अच्छा, देख लिया उसे मैंने। तुम यहाँ किस लिए खड़ी हो? जाओ अपना काम करो।
जी अच्छा बीबी साहिबा।
और तुम मेरे साथ यहाँ आओ। सही से चलो, रुको यहीं। हाँ
यकीनन ये किसी हसब नसब वाले इज्जतदार घराने की है, गौर से देखो इसे।
घूमो, एक चक्कर काटो जरा।
मैं तकरीबन इस पर मुतमईन हूँ कि कोई लाखों करोड़ों की जायदाद का मामला होगा जब इस जैसी लड़की को मारने की ठानी होगी।
घूमो ना, ये कोट किस बेढंगे इंसान ने तुम्हें पहनने के लिए दिया है? अपने हाथ ऊपर उठाओ। ओह ये क्या है?
बात सुनो हिंगामा साहिबा, इसको सिर्फ 3 से 4 दिन यहाँ रहना है, इसके बाद जब इसका फैसला हो जाएगा तो फिर।
पहले तो मुझे ये देखने दो कि हम एक आध घंटे भी यहाँ साथ रह सकते हैं या नहीं। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुमको कुछ भी याद नहीं आ रहा, कोई नाम, कोई रिश्तेदार? कैसा दो टोक जवाब दिया।
तो जाहिर सी बात है, क्योंकि काफी हद तक ये कुएं में बैठी रही है।
कहीं इस हसीन जवान लड़की से तुम अपनी दूसरी शादी तो नहीं बनाना चाहते जो इतना इसकी तरफदारी कर रहे हो?
देखो हिंगामा, तुम्हारी ये बात निहायत घिनौनी थी। वो काम मत करो कि मैं इसे ले जाके नीचे दरवाजे के बाहर खड़ा कर दूं और टाउन सेंटर वाले आके ले जाएं।
इतना याद रखना कि हो सकता है तुम मेरे शोहर को बेवकूफ बना सको, मगर मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आने वाली। सिर्फ आज रात के लिए तुम यहाँ रह सकती हो, वो भी कल तक। फिलहाल मैं नहीं चाहती कि कोई ये जान सके कि ये कहाँ से आई और यहाँ क्या काम है इसका।
देर से फैसला किया है।
क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने देर से फैसला किया?
इस वक्त एक खातून आपकी गाड़ी में बैठी हुई अपने मोबाइल फोन के जरिए तमाम तर खबर रसा इदारों को रिपोर्ट दे रही है कि हमारे घर में एक जद्दी पुश्ती मेहमान आई हुई जिसका नाम है कुएं वाली गुमशुदा।
अब ये कुएं वाली गुमशुदा कैसा बेतुका नाम है?
आप अपने मियाँ की बेइज्जती करने में माहिर तो हैं ही, जो भी पूछे ये कौन है कह देना कि मेरी पहली बीवी की बेटी।
आखिर गुमशुदा भी कोई खानदानी नाम हुआ?
अरे तुम्हारे सफाई करने वाले झाड़ू का नाम भी तो अकबर तासी साथी है।
अकबर तासी आती?
कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह?
तुम जा सो जाओ।
क्या दीना के ठिकाने का कुछ पता चला आपको?
इसका दीना से कोई वास्ता नहीं है। मुझे यह साबित करना है कि जो मुझसे कहा गया इस पर मुझे यकीन है।
हाजी साहब के इन कामों की मुझे समझ ही नहीं आती, अब क्या बोलूं? कुछ समझ नहीं आता इनका।
डॉक्टर हमारे यहाँ गोश्त खत्म हो गया है, बाकी सामान भी खत्म पे है, ये मैंने लिस्ट बना दी है, लेते आना।
सर मैं ऑफिस के लड़कों से कह दूंगा वो लाके दे देंगे, मगर तुम्हें लाने का जिम्मा तुम्हारे इन भाइयों का है।
रामीन
जनाब आप जहमत कीजिए और खुद ही अश्मतियान को फोन करके उससे आखिरी जवाब मांग लीजिए ताकि मुझे एक जवाब मिल जाए, ताकि मैं बाकी अफराद को फोन करके कह दूं कि अपने डिमांड नोट्स लेके आ जाएं।
आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, आप आज से सीधा अपनी मेज पे जाके बैठेंगे, सिर्फ अपना काम करेंगे और उसी से आपको तनख्वाह मिलेगी, वो भी इन बच्चों के सर का सदका होगा।
लेकिन बाबा डॉक्टर को तो जो भी
आप दखल मत दें, आप दखल मत दें। इसका वो साथी जब उठेगा उसे भी कह देना कि आज से अपनी रोटी पानी का बंदोबस्त कर ले। मैं ये देखना चाहता हूं कि इस घर में जो अफराद मेरी माल और दौलत और मीरास की फिक्र में है वो मेरे बगैर कब तक अपने पांव पे खड़े रह सकते हैं। रामीन
इस तरह से तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने आसमान से नाजिल होने वाली आफत को मान लिया।
आफत तो वैसे भी आ सकती है कभी भी, मगर इस बार मैं बैठकर ये देखना चाहता हूं कि ये आफत आसमान से आती है या जमीन से।
बाबा खुदा की
कसम, जो कहना है वो कहे, कहता रहे, रमजान के आखिर तक, उस वक्त पता चलेगा कि हर शख्स के दिल में क्या छुपा हुआ है। अब तुम लोग कुछ भी कर लो, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं वो काम करूंगा कि तुम लोग मजबूर हो जाओ कि ये और इसकी वो खपती मां और उस खलील सहाफ के खुदा और मेरे दरमियान किसी एक को चुन लो। चलें।
अगर आपने फैसला सुना ही दिया तो फिर मैं यहाँ रुक जाता हूँ और अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, और डॉक्टर से फारिग होते ही मैं और अम्मी।
खाम ख्याली है तुम्हारी, उसके बाद क्या उस लड़की की खातिर लड़ाई करना चाहते हो?
अपनी माँ का बोरिया बिस्तर लपेट के उसे अपने चाचा के हवाले कर दोगे?
बाबा।
हाँ
रामीन तुम कुछ मत कहो, रामीन यहाँ से चला जाएगा और मैं अपने बाप मुरव्वत और गैरतमंद शौहर के पास रहूंगी।
अम्मी मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा।
मैंने तुमसे कहा है ना कुछ मत कहो। रामीन जिस लड़की को चाहता है उसके साथ यहाँ से चला जाएगा, मैं यहाँ रहूंगी और ये दुआ करूंगी कि जो भी आफत आए मेरे सर पे आए।
बाबा जान चलें।
तुम इस घर में रहो और अपनी दुआ मांग लो। तुम्हारा बेटा आज से कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ है, क्योंकि तुम दोनों का तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
अब क्या होगा? तुम तो सिर्फ बैठोगे, तमाशा देखना चाहते
हो। तुम दोनों इस घर में रुकना चाहते हो ताकि मेरे उस भाई की नुमाइंदगी में सबके दिलों को बदलो। वाह चलो चलते हैं।
बेगैरत आदमी, ये क्यों नहीं कहते कि उस लड़की की खातिर अपनी जबान से फिर गए?
हो सकता है कि खौफ ने उनसे ये करवाया हो अम्मी।
हाँ वो तो है, अपने चचा की नुमाइंदगी का दफ्तर तो तुमने खोल ही लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये सोच लिया है कि तुम अपने बाप के बॉडी गार्ड बन जाओगे और खुदा अरहमुर राहिमीन तुम्हारी वजह से उन पर कोई आफत नाजिल नहीं करेगा? हाँ
खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज मेरी जान।
जिस अहमक को तुम लोगों ने घेर रखा है उससे कुछ बईद नहीं कि वो ऐसा सोचे।
अम्मी अब आप शुरू मत कीजिए, वो डब्बा चचा का ही था और उसका शाहीन से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो?
अब किस लिए जाऊं? क्या उस सदके के लिए जो महीने के आखिर में मेरे कशकुन में फेंक दिया जाएगा?
अब क्या हो गया, इस खंडर में दो मिनट के लिए भी हम सुकून से सो नहीं सकते। हाँ
चलो बच्चों, बहुत हो गया कठपुतलियों का तमाशा।
तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे हाथ पांव नहीं बांधे मैंने, मुबारक हो। क्या कह रहा था ये आदमी? हाँ फिर हंगामा मचाना शुरू कर दिया था इसने।
मुझसे बात मत करो गिरगिट कहीं के, अम्मी आप इसे समझाएं।
अगर तुम्हारी मुराद आदमी से तुम्हारा बाप है तो कल से तुम्हें उस आदमी के सहारे के बगैर रोटी कमानी है।
अरे एक मिनट, मसला क्या है आखिर? हमारा हाथ हमेशा सीने पे होता है और रामीन का हाथ कमर पे, मगर हर झगड़े के बाद हम सोने की लकड़ी कहलाते हैं और वही सगी औलाद शुमार होती है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आज से एक मुनफरिद बिजनेस की तलाश में निकलूंगा समझे, लेकिन फिर भी मैं जितना भी कमाऊंगा वो सिर्फ अपने ऊपर खर्च करूंगा, सिर्फ अपने ऊपर। समझते हैं कि बहुत छोटा कदम उठाया है उन्होंने। हाँ देख लूंगा मैं सब लोगों को।
लग रहे तुम नींद में ही मर जाओ, उठो और बाहर आओ, देखो तुम्हारा बाप पागल हो गया है।
वो क्यों?
मुझे क्या पता, मुझे तो कुछ बता ही नहीं रहे। मेरे ख्याल से दीना के खो जाने से उनकी अक्ल।
ऐसे रखो कि बिखर ना जाए।
अच्छा
आने जाने में रुकावट ना बने।
हाजी साहब ये तो कम है।
मैंने कहा था कि इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास।
मैंने कहा था मुनासिब कर लेंगे।
तो करो ना मुनासिब, मेरे पास जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर होती तो मैं इससे ज्यादा लकड़ियाँ खरीद लेता।
कम से कम बच्चों के लिए तोहफा दे दीजिए।
बाबा जान मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
तुम्हें बरकत दे मेरे भाई।
बाबा जान मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आपने सीढ़ियाँ बनाने का काम शुरू कर दिया है या घर को तोड़ ताड़ के छत बदलना चाहते हैं?
ऐसा कुछ नहीं जो तुम और कोई और मेरा मजाक उड़ाए। अरे भाई साहब खड़े क्यों हो, बजाय इस पागल दीवाने को देखने के अपना काम करो।